نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. 23वें पारे का सेकंड रुप है खुलासे कुरान के सिलसिले में, लेकिन हम सूरत सफात से शुरू करेंगे. चंद बातें सूरत के बारे में. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. सूरत सफात मक्की सूरत है. तरतीब के अतबार से देखें तो 56 नंबर की सूरत है. ये इस मक्का के उस दौर में नाजिल हुई कि जब जुल्म सितम आम हो चुका था. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़ी सारे साथी हिजरत करके हबशा जा चुके थे और आपके साथ तकरीबन 30-40 के करीब लोग मक्का में रह गए और जुल्म सितम उन पर रवा रखे जा रहे थे. इस सूरत में अल्लाह सुबहाना तआला ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से लोगों के साथ डील करने का तरीका बताया कि जब हालात दिल शिकन हों, जब लोग आपकी बात सुन के ना दें, तो फिर उस वक़्त उनके साथ कैसा मामला पेश होगा. इस सूरत के मजामीन में तौहीद की दावत, आखरत का जवाब और मजाक और तमस्खुर जो उड़ाया जा रहा था उसको किस तरह से टैकल करना है, इसका हमें काफ़ी ज़्यादा जिक्र मिलेगा. और मक्का वालों को अल्लाह ताला ने खोल के बयान कर दिया कि जिस शख्स का आज तुम मजाक उड़ाते हो अन करीब वो तुम पर गालिब आ जाएगा और तुम अल्लाह के लश्करों को अपने घरों में उतरता हुआ पाओगे. मुराद यह कि उस वक़्त फिर अजाब आएगा लेकिन तुम कुछ कर नहीं सकोगे. इस सूरत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा बहुत खूबसूरत अंदाज से आ रहा है. एक तरफ तो इनके अपने बुतों को तोड़ने की बात है और दूसरी तरफ बदले में एक ऐसा खूबसूरत बच्चा मिलने की बात आएगी कि जिसने बाप के हुक्म पर अपनी जान देनी भी गवारा कर ली. अल्लाह ताला इन किस्सों में हम सबको सबक देता है कि जब भी तुम्हारी जिंदगी में दीन के नाम पे कोई आजमाइशें आए तो तुमने किस तरह से बिहेव करना है. और सूरत का नाम सवाफात पहले ही लफ्ज में सफ बांधने वाले फरिश्तों की ये सिफत है. देखेंगे कि इसमें हमारे लिए क्या मैसेज है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वस्साफाति सफा फज्जाजिराति जजरा फत्तालियाति जिक्रा इन्ना इलाहुकुम लवाहिद. अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है. कतार दर कतार सफ बांधने वालों की कसम, फिर उनकी कसम जो डांटते और फुटकारने वाले हैं, फिर उनकी कसम जो कलामे नसीहत सुनाने वाले हैं. जवाब कसम क्या है कि इन्ना इलाहुकुम लवाहिद, यकीनन तुम्हारा माबूद हकीकी बस एक ही है, जो जमीन और आसमान और इसके दरमियान की तमाम चीजों का मालिक है, जो जमीन और आसमान में है और सारे मशरिकों का मालिक भी है. सूरत के आगाज में ये जो सिफात आई, मुफसरीन में से अक्सरियत की राय क्या है कि ये फरिश्तों की कुछ हालतों की कस्में खाई गई. कितार दर कितार सफ बांधने से मुराद जहाँ डिसिप्लिन है, ऑर्गेनाइज होना है कि कायनात का जो निज़ाम इतने खूबसूरत तरीके से चल रहा है तो ये एक खास डिसिप्लिन पे. अफसोस की बात है कि आज वेस्ट ने तो इस असूल को अपना लिया और हम में से बहुत सारे मुसलमान इसको छोड़ चुके कि इतने लोग वहाँ, इतनी मखलूकात हैं कायनात में लेकिन निज़ाम बिल्कुल नहीं बिगड़ता. वजह क्या है कि हर बंदा अपनी जगह पे अपने हिस्से का काम करता है, जो चीज़ उनको कहा गया वो वही है. इसी सूरत की 165 आयत में दोबारा इसकी बात आएगी कि फरिश्ते खुद अपने बारे में कहते हैं कि वइन्ना लनहनु साफून, कि हम अलबत्ता सफ़े बांधते हैं. हम सबको भी इसमें अपने लिए अमल की यही बात लेनी चाहिए, चाहे लोग थोड़े हों या ज़्यादा, बड़ा मजमा हो या छोटा, हमें डिसिप्लिन को नहीं जाया करना चाहिए और इसी से एक इंसान को फिर आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं. बस आप देखिए कि अगर एक स्टोर है और अच्छा चलता है तो उसकी 100 ब्रांचेस पूरी दुनिया में होंगी, कोई मसला नहीं होता. लेकिन अगर डिसिप्लिन के बगैर कोई जगह चलती है तो हो सकता है एक दुकान भी ठीक तरह से ना चलती हो लोगों की. तो लिहाजा बासूल लोग जो होते हैं, जो डिसिप्लिन लोग होते हैं, चाहे वो छोटे छोटे कदम भरें, थोड़ा ही काम क्यों ना करें, लेकिन एक वक्त आता है कि वो बहुत आगे चले जाते हैं. फिर इसमें एक और चीज देखिएगा कि रब्बुल मशारिक की बात है, सारे मशरिकों का रब. कायनात में आज डिस्कवरीज हो रही हैं और देखते हैं कि करोड़ों सियारे हैं और हर एक अपना मशरिक है. और यहाँ सिर्फ मशारिक की बात है, आगे जाके हम देखेंगे कि मशारिक व मगारिब की भी बात आती है. इससे अल्लाह सुब्हान तआला की बड़ाई को देखने की जरूरत है कि अल्लाह कितनी बड़ी ताकत है और उसके एक इशारे पे पूरी कायनात चल रही है. अगर आज मैं उसके हुक्म नहीं मानूंगी तो कौन सी जमीन मुझे बना देगी और कौन सा आसमान मेरे लिए तहफ्फुज का जरिया बनेगा. असल बात है कि लोग जब अल्लाह की कदर नहीं करते तभी उनसे शिर्क होता है और वो ऐसी ऐसी जगहों पे जाके बैठे होते हैं تلتلکت ان زین السماء الدنیا بزینت الکواکب، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا، اور ہر شیطان نے سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا. یہ شیاطین ملے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے بہم عذاب ہے. تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک شعلہ ان کا پیچھا کرتا ہے. ان آیت میں دیکھیے کہ ستاروں کے جو تین بڑے مقاصد قرآن پاک میں آتے ہیں، اس میں سے ایک زینت اور دوسرا شیاطین کو بھاگنے کا ذریعہ بنانا. یہ دو بڑے بڑے مقاصد ادھر آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک مالک یہ سب کچھ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میری اس کائنات میں جمال ہے تو کمال بھی ہے. عموماً ہم لوگ جمال دیکھتے ہیں، بیوٹیفل چیزیں دیکھتے ہیں، تو اس میں کوئی خوبی نہیں ہوتی، صرف ڈیکوریشن پیسز کے نام پہ گھروں میں رکھ دیتے ہیں، اور جہاں کام کی چیزیں ہوتی ہیں تو عموماً وہ خوبصورت نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نمائشی زینت نہیں بلکہ با مقصد زینت ہے. اور اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کام کی چیزوں کو بھی خوبصورت ہونا چاہیے. مثلا اگر آپ صفائی کرتے ہیں، ویکیوم ہے یا آپ کے کلیننگ سٹف ہے، یا اگر آپ کے کپڑے دھونے کا سامان ہے، باسکٹ ہے، تو وہی نہیں بکھری ہونی چاہیے، وہ خود ہی نہ گندی ہو. بعض لوگوں کی کچرے کی باسکٹ خود اتنی گندی ہوتی ہے کہ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس میں کچرا ڈالا جائے گا تو یہ کیا صفائی کی جائے گی. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا کے ہم سب کو اس چیز پہ غور کرنے کی دعوت دی کہ کوئی چیز رکھی ہوئی کیسی لگے، دیکھنے میں کیسی لگتی ہے، یہ اس چیز کی گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ اس چیز سے فائدہ کیا لیا جائے گا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں جو بات ہم سب کو بتا دی، اور وہ کیا ہے کہ بعض دفعہ شیاطین جو ہیں وہ ستاروں تک پہنچ جاتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں کو سننے کے لیے، لیکن اللہ کی ذات نے ان سے اس کو محفوظ کر دیا. تو کیا آج دنیا میں اللہ کے کلام یا اللہ کے نبی کے خلاف جب لوگ باتیں الٹ سلٹ بولتے ہیں، اپنی مرضی سے قرآن بنا کے پیش کرتے ہیں، ویب سائٹس میں بھیجتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں روک سکتا؟ بالکل روک سکتا ہے. جس نے بالکل ابتدا سے بنیادی سور سے وحی کو محفوظ کر لیا، اسی نے آج بھی محفوظ کیا ہوا ہے. صرف یہ کہ ایک انسان اگر اس پہ غور کرے تو اس کو پتہ چلتا ہے. جہاں چھوٹی موٹی باتیں ہمیں کانوں میں پڑتی ہیں، وہ اصل میں ہم مسلمانوں کا امتحان ہوتا ہے کہ ہم بھلا اس میں کیا کرتے ہیں. فرمایا کہ اور ان کے لیے بہم عذاب ہے، تاہم اگر ان میں سے کوئی کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ ان کا پیچھا کرتا ہے. اچھا یہاں آپ دیکھیے کہ قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو ساتھ ساتھ سائنس دکھائی جاتی ہے نا، تو بڑی خوبصورت ایک رب دکھتا ہے کہ کائنات کے کچھ راز سائنس نے بتا دیے، رائٹ؟ کہ بھئی سورج گول ہے، زمین اوول ہے، اتنے فاصلے پہ ہے، دس اینڈ دیٹ، لیکن کائنات کے مقاصد کیا ہیں یہ وہی نے بتائے ہیں. یعنی سائنس آپ کو یہ تو بتاتی ہے کہ ستارے ہیں، سائنس یہ تو بتاتی ہے کہ سورج ہے، چاند ہے، گھوم رہے، لیکن یہ کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کائنات کا نظام اللہ نے کیوں پیدا کیے، اس کو وہی نے کھولا. اور ہم دونوں کو مانتے ہیں، نہ ہم سائنس کو کنٹرڈکٹ کرتے ہیں نہ وہی کو، لیکن سائنس کی وہ بات مانیں گے جو کہ وہی سے ثابت ہوگی، اور اس کے اپوزٹ ہم دوسری باتیں نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب ان سے پوچھو کہ ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں. ہم نے تو ان کو لیس دار گارے سے پیدا کیا، تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹھوں اور کھیل میں اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے. بھلا یہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی بن چکے ہوں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آبا اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم خدا کے معاملے میں بے بس ہو. کیسے بے بس ہو؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس وہ ایک ہی جھڑکی ہوگی، اور یکایک یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. ذرا سوچیے تو صحیح، پچھلی آیتوں میں ان کے کیجول ایٹیچیوڈ کا تذکرہ ہے، کھیل سمجھتے تھے، مذاق سمجھتے تھے، جب بھی کوئی اللہ کی بات سنتے تھے تو تماشا سمجھتے تھے، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جس سب کچھ دے کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. آپ سوچیے کہ کسی کو امید نہ ہو امتحان کی، اور جائے اسکول میں اور ٹیچر کے چلو بیٹھو آج امتحان ہے، تو کیا فیل ہوگا؟ بالکل اسی طرح سے لگ رہا ہے یہاں بھی کہ حاضر یوم الفصل، یہ ہے یوم الجزا، فیصلے کا دن. پھر اس دن ان کو اپنی کمبختی لگے گی کہ ہائے ہم نے زندگی کہاں ضائع کر دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہر چیز کھول کے دے رہا ہے، لیکن ہم لوگ اس کو دیکھنا نہیں چاہتے. آج اگر دنیا میں رہتے ہوئے تیاری ہو، آخرت کی کچھ فکر، کچھ جنت کا شوق، کچھ جہنم کا خوف، کچھ कुछ ना कुछ करते जाएंगे तो वहां जाके कोई हैरत का मामला नहीं होगा। लेकिन जो लोग आज दुनिया में मस्तियों में मस्त है और ऐसे लगता है कि उनकी जिंदगी का मकसद ही सिर्फ फन और क्या कुछ है, तो ऐसे लोगों के लिए तो वाकई उस दिन बहुत बड़े बड़े टॉर्चर होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस तरह से यकीन दिला दे आखिरत का, कि गालिबा हजरत अली का कौल है कि अगर खुदा मेरे सामने आ जाए तो मेरे यकीन में कोई ज्यादती नहीं होगी। यानी मुझे आज भी यकीन है, इतने ज्यादा यकीन से वो आखिरत की और गैब की बातों को सुनते और मानते थे। लेकिन बात यह है कि ये यकीन हमें क्यों नहीं आता, कि दुनिया शैतान ने बड़ी खूबसूरत की हुई है, क्योंकि आखिरत का यकीन दुनिया को छोटा कर देता है। फिर दुनिया में दिल नहीं लगता, फिर दुनिया की चीजों को इंसान अपना हम और गम नहीं बना लेता। इसलिए अब इंसान को अल्लाह ताला उसका असल दिखा के बताते हैं कि बताओ वो जहन्नम जिसके बारे में तुम सुनते थे, उसके बारे में आज तुम्हें अगर यकीन आ गया हो तो अब कर क्या सकते हो, तुम्हें नहीं पता तुम क्या करोगे। उहशुरुल्लज़ीना हुक्म होगा, घेर लाओ सब जालिमों और इनके साथियों और इन माबूदों को जिनकी वो अल्लाह को छोड़कर बंदगी किया करते थे। या लफ्ज बंदगी को नोट कीजिएगा, कोई नमाज नहीं पढ़ता इनके लिए, लेकिन उनकी बात मानना बंदगी बमानी एतात, जैसे पीछे सूरत यासीन में गुजर गया, यानी ये इनकी बातें मानते थे। जो ये स्याह को सफेद को सफेद को स्याह कर देते थे, ये दिखा रहे होते थे और मानते थे मिन दूनिल्लाह अल्लाह को छोड़कर। फहदूहुम इला सिरातिल जहीम, बस रास्ता दिखा दो इनको जहन्नुम का। आप देखिए कि किसी के भी पीछे चलते हुए इंसान एक लम्हे के लिए जरूर सोच ले कि वो खुद किधर जा रहा है। किसी की गाड़ी के पीछे स्टिकर था कि डोंट फॉलो मी बिकॉज आई एम लॉस्ट, मैं खुद रास्ता भटका हुआ हूँ, तुम्हें क्या दिखाऊंगा। अब ये तो एक मन चले का जुमला था, लेकिन अमली जिंदगी में देखिए तो बहुत सारे लोग इसी किस्म से दूसरों के पीछे चले हुए। हैरत की बात है कि आप देखिए कि सरीगन लोग शिरक कर रहे होते हैं, लोग सरीगन माथे टेक रहे होते हैं, सजदे कर रहे होते हैं दूसरों के सामने और कहते हैं वो शिरक नहीं है। हैरत की बात नहीं है, इंसान की अकल गुम हो जाती है कि अल्लाह के बंदो अगर ये शिरक नहीं है तो फिर और शिरक क्या है, ये किस तरह से हो रहा है। किसी एक साथी ने अपनी एक बात शेयर की कि किसी जगह कोई लोग बैठे थे और औरतों और मर्दों को उन्होंने साइड बाय साइड बिठाया हुआ था और सब इस तरह थे जैसे मस्जिदों में उमून किबला रुख बैठते हैं। फिर जब उनके बुजुर्ग आए जो उनके बड़े हैं तो वो एक साइड पे थे, यानी आप अगर इमेजिनेशन में करें कि अगर इधर किबला है तो वो इधर बैठे, और जब वो वहां बैठ के सेट हो गए तो फिर अनाउंस किया गया कि आप सारे किबला रू हो जाएं। किबला रू हो जाएं क्या, यानी किबला तो इधर कहते नहीं, ये हमारे किबला काबा, ये हमारे बुजुर्ग साहब है। और लोग फिर उस तरफ बकायदा जो औरतें हैं वो घूम के उनकी तरफ मुंह करने लगी और जो मर्द है वो खड़े होकर अपनी जगह पे नाचना और जो भी अपने तौर पे समझें कि खुशी का इजहार कह लें या रिस्पेक्ट का इजहार, मुझे तो नहीं पता कि कौन सी खुशी और कौन सा ये रिस्पेक्ट होती है, लेकिन आप देखिए कि लोग सरीखन इन चीजों में पड़े रहते हैं, कभी नहीं इंसान सोचता इन चीजों को कि क्या ये शिर्क है कि नहीं, किस तरह अकल मारी जाती है लोगों की। तो अल्लाह कहते हैं कि ऐसे लोगों को फिर जहन्नुम का ही रास्ता दिखा दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबकी आंखें खोल दे। मैं तो सोचती हूँ दुनिया के नाम पे तो भटकता है इंसान, दीन के नाम पे ना भटके, ये भटकना तो बहुत दूर का है। और जरा इनको ठहराओ, इनसे कुछ पूछना है, यानी इनको अल्लाह कहता है रोको जरा, जैसे वहां आपको इमिग्रेशन पे रोक लिया जाए कि बैठे जी जरा आपसे कुछ सवाल जवाब होंगे फिर आपको जाने दिया जाएगा। क्या हो गया तुम्हें, अब क्यों एक दूसरे की मदद नहीं करते, यानी दुनिया में तो बड़े दावे करते थे ये करनी वाले और ये बचा लेंगे और हम इनका पल्लू पकड़ लें तो ये हमें बचाएंगे। अल्लाह ताला पूछेंगे आज क्यों नहीं एक दूसरे की मदद कर रहे, अरे आज तो ये अपने आप को एक दूसरे के हवाले किए जा रहे हैं, यानी आज वो उसको कह रहा है इसकी कसूर है, वो कहता था इसकी है, कोई बड़े छोटों को छोटे बड़ों को कर रहे होंगे। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर मुर्दे अपने डालेंगे। वक्त बला बहदुम अलाबादी यतसाअलून, इसके बाद एक दूसरे की तरफ मुड़ेंगे और बाहम तकरार शुरू कर देंगे, पैरवी करने वाले अपने पेशवाओं से कहेंगे। हाईलाइट कर लें आयात को, और अपने साथियों में प्यारों में जिसके अकीदे में जरा से जोफ देखते हैं रो धो के उसको यकीन दिला दें, लेकिन उसको एक दफा सिर्फ कुराने पाक से सूरत अल अनाम का तर्जमा पढ़वा दें, बहुत सारा शिर्क जो है उससे ही दूर हो जाता है अल्लाह के हुक्म से। और इसी तरह की बहुत सारी और आयतें कुराने पाक में हम पढ़ते ही जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला सबकी आंखों को खोल दे। अब इनकी तकरार सुनिएगा, इसके बाद एक दूसरे की तरफ मुड़ेंगे और बाहम तकरार शुरू कर देंगे, पैरवी करने वाले अपने पेशवाओं से कहेंगे तुम हमारे पास सीधे रुख से आते थे, वो जवाब देंगे नहीं बल्कि तुम खुद ईमान लाने वाले न थे और हमारा तुम पर कुछ जोर भी तो न था, तुम खुद ही सरकश लोग हो चुके थे, आखिरकार अपने रब के इस फरमान के मुस्तहिक हो गए कि हम अजाब का मजा चखने वाले हैं, तो हमने तुमको बहकाया क्योंकि हम खुद बहके हुए थे। अब आप सोचिए तो सही जरा, कहाँ कोई आपको कोई 100 मील दूर बाहर ले जा के फिर कहे सॉरी मैं आपको इतनी दूर ले आया, लेकिन असल वजह यह कि मैं खुद भी लॉस था। क्या इंसान को अगर सोचिए कि रास्ता भी अगर वन वे हो, वापस जा नहीं सकते, आगे खाने का सामान कोई नहीं, जीने का कुछ नहीं, मौत यकीनी है, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें लग रही हैं। दुनिया में कुछ भी अगर इंसान खोता है फिर मौका है, अल्हम्दुलिल्लाह तौबा कर ले, शिर्क था तो तौबा कर ले, किसी के अंधी अकीदत ने अंधा बना दिया था तौबा कर ले, पलट आए। लेकिन आप सोचिए कि जब सब कुछ खत्म, जब टाइम सब, जब सारा कहानी खत्म, उस वक्त कहा जाएगा सॉरी वो हम खुद भी तो भटके हुए थे ना, तो फिर अब तुम्हें भी तो हम यही कर सकते थे, उस वक्त दिल पे क्या गुजरेगी? वाकई जो कुरान पाक में आता है ना कि एक दूसरे को फिर जहन्नुम में ये गालियां देंगे, एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, एक दूसरे को कहेंगे कि अल्लाह ताला इसको पकड़, इसको दोहरा अजाब दे, ये सच है। जिसको दुनिया में भी आप देखें ना, रिग्रेट होता है, एक होता है बंदा अपने जज्बात का इजहार कर लेता है, एक नहीं कर पाता तो फिर बाद लोग सर को टकरे मारने लग जाते हैं, बाद अपने हाथ काटने लग जाते हैं, क्या बताओ मैं क्या करूं, मैंने तुम्हारे पीछे लगकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। किसी का जवान बच्चा अगर किसी गलत शख्स के हाथों में लग के नशा शुरू कर दे, कोई खराब काम शुरू कर दे, तो आप सोचिए कि उस माँ का कितना गुस्सा होगा उस पे जिसने उसके बच्चे को बहकाया। लेकिन जिनकी जिंदगी को आग लग गई, जिनकी नेकियों को आग लग गई, वहां उस वक्त ये क्या करेंगे? अल्लाह ताला कहते हैं ये कोई नई बात नहीं, इन कज़ालिक नफ़लु बिल मुजरिमीन, इसी तरह वो उस रोज सब अजाब में मुश्तरिक होंगे, हम मुजरिमों के साथ यही कुछ किया करते हैं। ये वो लोग थे कि जब इनसे कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं, तो ये घमंड में आ जाते थे और कहते थे क्या हम एक शायर मजनू की खातिर अपने माबूदों को छोड़ दें। ये किसको कह रहे हैं? अल्लाह के नबी को। लो अब इसकी बातों में आ जाए, हालांकि वो हक लेकर आया था और इसने रसूलों की तस्दीक की थी, अब उनसे कहा जाएगा कि तुम लाजमन दर्दनाक सजा का मजा चखने वाले हो, और तुम्हें जो बदला भी दिया जा रहा है इन्हीं आमाल का दिया जा रहा है जो तुम किया करते थे। अल्लाह ताला हम सबको इस बुरे अंजाम से बचाए, और हमारे साथी जो इस किस्म की बातें करते कराते हैं उनसे अल्लाह महफूज रखे। यहाँ बहुत सारी बातें हैं जिसपे तवज्जो की जरूरत है, जैसे कहा कि तुम हमारे पास दाई तरफ से आते थे, इसका क्या मतलब है? इससे मुराद यह है कि तुम कुव्वत और ताकत इस्तेमाल करते थे, क्योंकि अरबी जबान में जो यमीन का लफ्ज है ना, ये कुव्वत के लिए आता है, असहाबुल यमीन, दाया हाथ, कसम भी जो खाते थे उसको भी यमीन कहते हैं। बास कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि ताकत और कुव्वत के साथ तुम हमें अपनी मनवा लेते थे, हम बेचारे कमजोर थे और तुम हम पर गालिब थे, इसलिए तुम अपने जोर से हमको गुमराही में ले जाते थे। और अगर इसको खैर और भलाई के मानी में लिया जाए तो मतलब क्या होगा? कि तुमने खैर ख्वाह बनकर हमें धोखा दिया, हमें तो ये यकीन दिलाते रहे कि तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वो हक रास्ता है, लेकिन जब तुम्हारे फरेब में हम आ गए तो हमें तुमने फिर बाद में धोखा दे दिया। इस तरह की बातें करते हुए लोग जो किसी के पैरोकार थे, जो पेशवा थे, वो सारे लोग एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे। लेकिन अब इसके आगे एक बड़ा खूबसूरत अंजाम है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें ऐसे काम करने वाला बना दे कि हम इस गिरोह में शामिल हो सकें। कौन? इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन उलाइक लहुम रिज़्क़ुम मालूम फवाकिहू वहुम मुकरमून, मगर अल्लाह के चुने हुए बंदे इस अंजाम बद से महफूज होंगे, इनके लिए जाना बूझा रिस्क है, हर तरह की लजीज चीजें और नेमत भरी जन्नतें जिनमें वो इज्जत के साथ रखे जाएंगे, तख्तों पर आमने सामने बैठेंगे, शराब के चश्मों से सागर भर भर के इनके दरमियान फिराए जाएंगे, ये चमकती हुई शराब जो पीने वालों के लिए लज्जत होगी, न इनके जिस्म से इसको कोई जरर होगा न इनकी अकल इससे खराब होगी, और उनके पास निगाहें बचाने वाली खूबसूरत आंखों वाली औरतें होंगी जैसे कि अंडे के छिलके के नीचे छुपी हुई झिल्ली। अब देखिए कि यहाँ आप जन्नतियों की बातें हैं, सबसे पहले इसमें अल्लाह सुबहाना तआला ने इखलास की बात की, ये है वो पहली चीज जिसकी जरूरत है, मुखलस हो जाए, खालिस हो जाएगा ना बंदा, अल्लाह को दिखा दें कि आप अल्लाह के, फिर आपकी बड़ी बड़ी खताएं भी अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह को पता है ये मेरा बंदा। बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे जो आपके ट्रस्ट के लोग होते हैं ना, बस अगर आपका बच्चा है या आपके घर का कोई मुलाजिम या आपका कोई इम्प्लाई जो बहुत सिंसियर है आपकी नजर में, अब आप देखते हैं कि उससे वाकई कोई गलती हो गई, कोई चीज टूट गई, कोई उसकी करने से काम गलत हुआ, लेकिन आप क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, अपना बंदा है, मेरे से भी तो हो सकती थी ना, मेरे बच्चे से होगी मेरे से भी है। लेकिन जब बंदा अपना साबित ही ना करे कि मैं मुखलिस हूं, तो उसकी तो छोटी सी बात पे शक आएगा कि ये किसी हसद की वजह से ऐसी बातें करता है। तो तो असल जो हमारा एक काम है ना, वो क्या है कि हम अल्लाह को ये साबित कर दें कि अल्लाह हम तेरे लिए खालिस हैं, हमारे अंदर इखलास हो। काम नहीं अच्छे कर सकते, नहीं करना आता, नहीं सही कर पाते, पूरा नहीं करते, आधा नहीं करते, हिम्मत नहीं, ताकत नहीं, लेकिन अल्लाह है तेरे बंदे। मुझे किसी की बात याद आ गई कि दो लोग बैठे हुए थे तो बातचीत कर रहे थे आपस में, तो एक साथी थी तो वो कहने लगी, मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह मेरे से अच्छा कोई काम करने वाला लाए और मैं अपना काम उसको दे दूँ। स्कूल के कामों की बात हो रही थी तो दूसरी साथी थी, उन्होंने उसके मुंह पे हाथ रखा, कहने की खामोश हो जाओ, ये दुआ ना कभी मांगो, मैं तो ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह जैसा भी करती हूँ, टेढ़ा करती हूँ, सीधा करती हूँ, तू मुझसे ही करा, क्योंकि मुझे मेरी जगह से ना उठाना। और हकीकत है कि जब बंदा एक जगह से हटा दिया जाता है या हटता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, काम चलता है, लेकिन उस बंदे का नुकसान होता है। तो दुआ ये करें कि अल्लाह जो भी कर रहे हैं बस अपने दर के भिखारी समझ के तू हमें यहाँ लगे रहने दे। फिर दूसरी बात देखिए कि यहाँ फवाकिह का लफ्ज आए, जन्नत में खाने जो आएंगे उसके लिए यहाँ फाकिह का लफ्ज है। इसमें एक बड़ा खूबसूरत बारीक सा इशारा है कि दुनिया में जब हम खाना खाते हैं ना, ये जरूरत के लिए खाते हैं। ना खाएं तो आपको तो लगता है कि थोड़ी देर में नकाहत हो रही है, शुगर लो हो गई, हिम्मत नहीं रही, दिल घटने लगा, लेकिन जन्नत में तो ऐसा नहीं होगा। ना वहां भूख है, ना वहां कोई जिस्म के अंदर कमी होगी, बल्कि जन्नत का खाना जो है वो फन के लिए। जैसे बिल्कुल ऐसे समझे कि एक होता है लज्जत लेने के लिए खाना, जैसे आप चॉकलेट खाते हैं, चौक भर खाते हैं, कोई पेट भरता है इससे? बच्चों से पूछे जरा कैसे खाते हैं, वो जावलों की तरह उसको खाएंगे, क्योंकि उनको मजा आता है उसमें। लेकिन इसके बरक्स रोटी सालन हैवी खाना जो खाते हैं उसे पेट भरता है। तो जन्नत का खाना सिर्फ लज्जत के लिए होगा, फवाकिह, मेवे खाना, जंक और इस तरह के स्नैक्स होंगे। और दूसरी बात आप देखिए कि शराब की बात हो गई, और वो शराब जो दुनिया में होती है, पीने से लेके इस जिस्म से निकलने तक हर जगह तबाही बर्बादी करती है। किस तरीके से पहले बदबू डाली जाती है, किस तरह चीजों को गलाया सड़ाया जाता है, फिर उसके बाद वो निकलती है, फिर पेट में जाती है तो सर में दर्द, सर से अकल में फतूर, फिर पेट के अंदर से कितनी तकलीफें देती हुई निकलती है। लेकिन जन्नत के अंदर इस तरह की कोई चीज नहीं, वो इस तरह गंदी चीजों से नहीं बनेगी, बल्कि उसको नहरों की सूरत में बहा दिया जाएगा। अब यहाँ एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नुक्ता है जिसको हम देखेंगे, जिसको वाकई देखकर ऐसे लगता है कि अकीदा कितनी बड़ी नेमत है। अच्छा अकीदा और बुरा अकीदा बंदों की मंजिलों को अलग कर देते हैं। और हकीकत है कि साथ रहने वाले लोगों का भी बाज दफा हालात क्या हो जाते हैं। फरमाया, फकबल बादुहुम अला अबादी यतसाअलून काल काइलुम मिनहुम इन्नी कानली करीन। फिर वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर हालात पूछेंगे, इनमें से एक कहेगा, दुनिया में मेरा एक हमनशीन था जो मुझसे कहा करता था, क्या तुम भी तस्दीक करने वालों में से हो, क्या वाकई जब हम मर चुके होंगे और मट्टी हो जाएंगे और हड्डियों का पिंजर बनकर रह जाएंगे तो हमें जजा और सजा दी जाएगी? अब क्या आप लोग देखना चाहते हैं कि वो साहेब अब कहाँ है? ये कहकर जो ही वो झुकेगा तो जहन्नुम की गहराई में उसको देख लेगा और उससे खिताब करके कहेगा, खुदा की कसम तू तो मुझे तबाह कर देने ही वाला था, मेरे रब का फजल शामिल हाल ना होता तो आज मैं भी इन लोगों में से होता जो पकड़े हुए आए हैं। अच्छा तो क्या अब हम मरने वाले नहीं? मौत जो हमें आनी थी वो बस आ चुकी, अब हमें कोई अजाब नहीं होना। अल्लाह ताला इस बात को बयान करके कहते हैं, इन्नहाज़ लहुवल फौज़ुल अज़ीम, हाँ यही एक कामयाबी है अज़ीमु शान। लिमिस्लि हाज़ा फलयअमलिल आमिलून, ऐसी ही कामयाबी के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। फिर पूछा जाएगा, बोलो ये मेहमानी अच्छी है या जक्कूम का दरख्त? हमने इस दरख्त को जालिमों के लिए फितना बना दिया। वो एक दरख्त है जो जहन्नुम की तह से निकलता है, इसके शगुफे ऐसे हैं जैसे शैतानों के सर, जहन्नुम के लोग इसे खाएंगे और इसी से पेट भरेंगे, फिर इस पर पीने के लिए खौलता हुआ पानी मिलेगा। इसके बाद इनकी वापसी इसी आतिशे दोजख की तरफ होगी। ये हैं वो लोग जिन्हें जिन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह पाया और इन्हीं के नक्शे कदम पर दौड़ चले, हालांकि इनसे पहले बहुत से लोग गुमराह हो चुके थे और इनमें हमने एक आगाह करने वाले रसूल को भेजा। अब देख लो कि इन डराए गए लोगों का क्या अंजाम हुआ। इस बद अंजामी से बस अल्लाह के वही बंदे बचे जिन्हें इसने अपने लिए खालिस कर लिया। अल्लाह हमें भी खालिस कर ले। अब देखिए कि इनमें चंद बातें, पहली बात देखिए कि आज दुनिया के अंदर बैठे हुए हम देखते हैं कि 1 सेकंड के अंदर दूसरी जगह मैसेज जाता है, शायद सेकंड का भी दसवां हिस्सा, मिली सेकंड में आप एक क्लिक करते हैं और आप देखिए सात समंदर पार आपका मैसेज पहुंचता है, टेलीफोन पे आवाज पहुंचती है, सेटेलाइट के ऊपर आप देखते हैं ये चीजें। अल्लाह ने इन आयतों में जन्नत और जहन्नुम की बातें बयान कर दी, एक जन्नत में बैठा है एक जहन्नुम में बैठा है। इसी से लोगों को ये कम्युनिकेशन और टेली कम्युनिकेशन और टेली ट्रांसपोर्टेशन के आइडियाज मिलते हैं कि जब ऐसी बातें लिखी हुई हैं तो फिर ये होके रहेगा, तो हमें इस पे शक नहीं होना चाहिए कि ये कैसे होगा। फिर दूसरी बात देखिए कि अकीदे के फर्क ने मंजिल जुदा कर दी। आज दुनिया में हम अपने दोस्तों को नाराज ना करने के खौफ से कुछ नहीं कहते, हम कहते हैं चलो खैर है ना, अब इनका कारोबार जैसा भी, अब बैठे रहो खाते रहो पीते रहो, फिर ऐसे माइंड करेंगे चलो अब ये नमाज नहीं पढ़ता, मैं इसको क्यों कहूँ, फिर मेरी इससे ताल्लुकात खराब होंगे। लेकिन यहाँ जाके देखिए एक कहाँ बैठा है और दूसरा कहाँ बैठा है, और ऐसे वक्त में वो लोग एक दूसरे को पिछली जिंदगी की बातें याद करवा रहे हैं। आप सोचिए जरा अपने प्यारों को जहन्नुम में जलता देखना कैसा लगेगा, नाम लेके सोचें जरा, अपने भाइयों के, अपनी बहनों के, अपने बच्चों, अपने शोहरों के, दूर से कहना और बात है, करीब के सर्कट में अपने इन साथी को सोच के देखे कि आग में जले, चैन आएगा। एक औरत है उसका शोहर बेनमाजी है, वो नमाज के बगैर सो रहा है और वो उसकी कोई फिक्र नहीं करती, कोई तड़प नहीं करती, कोई रिस्क नहीं लेती, तसव्वुर में सोच सकती है कि मेरे शोहर को आग लगी और मैं बैठी देखती रहूं। कितना ज्यादा इंसान को अल्लाह के साथ टूट के प्यार करने की जरूरत है कि अल्लाह इन आजमाइशों में ना डाल, और अगर ऐसी आजमाइश में डाल तो तू हमारे लिए इसमें आसानी कर। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने औरतों को बड़ी ताकत दी है, बहुत सारी औरतें बिगड़े हुए इंसानों को सही रास्ते पे ले आती हैं, लेकिन उसके लिए बिल्कुल गूंगा नहीं बन जाना चाहिए। आप कहें कि अच्छा कोई हादसा ही होगा तो फिर ही ये बदलेंगे, अच्छा जरा ये 50 साल के हो जाएंगे तो बदल जाएंगे, नहीं, जितनी ज्यादा आपकी कोशिश और रिएक्शन होगा, लड़ाई झगड़े से कतई नजर, एक इंसान अपने माहौल और अपने तरीके के साथ ऐसी बातें करे तो फिर आप देखिए कि दिल में डलता है। और सबसे बड़ी बात है तड़प तो पैदा कर सकते हैं ना, कम तो नहीं करने की जरूरत। हमारे बच्चे सोते रहे और हम सुबह उठ के फजर की नमाजों के साथ कुरान भी पढ़ ले, सिर्फ इसलिए बच्चों को ना उठाए कि आज वीकेंड है, चलो आज ये सो सो के गुजार ले तो कोई हर्ज नहीं, दुनिया में इसके ऊपर फिक्र करने की जरूरत है। फिर आप देखिए कि अल्लाह ताला ने इसमें तकाबुल के लिए दोस्तियों की भी खुराक का तस्करा कर दिया। जन्नतियों के पीछे क्या थे तो वाकेहा, और जहन्नमियों के क्या है, खौलते हुए पानी। जो ऐसे नहीं लग रहा कि ढोर डंगरों को ले जाया जा रहा है और पानी गर्म पिला पिलू के वापस उनको उनकी जगह पे लाया जा रहा है, और बड़ा जुर्म आपको क्या दिख रहा है कि अपने बाप दादा को गुमराह पाया और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते रहे। आज हम दुनिया में रस्मों को नहीं छोड़ सकते, आज हमें लगता है कि बस ऐसी चीजों को हम अपनी जिंदगी में ले लेंगे तो बस इतना ही काफी है कि हम इनको खुश करना चाहते हैं। लेकिन आप याद रखिए कि जब तक एक इंसान अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करेगा, उसका दीन भी खतरे में है और उसकी दुनिया भी खतरे में। अल्लाह ताला हमारी आंखें खोल दे। अब आगे कुछ चुने हुए लोगों का तस्करा, वो प्यारे लोग के जो हकीकत में अल्लाह के चुने हुए लोग थे, इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, अल्लाह तुम्हें मुखलस बना दे। कैसे, वलकत नादैन नूहुन फलनेमल मुजीबून वनजैनाहु वअहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम। हमको इससे पहले नूह ने पुकारा था तो देखो कि हम कैसे अच्छे जवाब देने वाले थे। नूह ने किसको पुकारा, अल्लाह को पुकारा। हमने इसको और इसके घर वालों को कर्बे अजीम से बचा लिया और उसी की नस्ल को बाकी रखा और बाद की नस्लों में उसकी तारीफ व तौसीफ छोड़ दी। सलाम है नूह पर तमाम दुनिया वालों में। हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा दिया करते हैं, दर हकीकत वो हमारे मोमिन बंदों में से था, फिर दूसरे गिरोह को हमने गर्क कर दिया। 950 साल की तकलीफ खत्म हो गई ना, आज दुनिया से गए हुए कई 100 साल हो गए, अजर बाकी है। आज अगर हम दीन के नाम पे कोई मुश्किल सह रहे हैं तो क्या ये बाकी रहनी है? और आप देखिए सूरत में, अब देखेंगे बार बार सलामुन अला नू, सलामुन अला इब्राहिम, सलामी क्या होती है उर्दू में सुना है ना, 21 तोपों की सलामी दी गई। ये गॉड ऑफ ऑनर होता है, एक किस्म का सल्यूट है ये, अल्लाह ताला ऑनर दे रहा है। दुनिया में नबियों को नहीं मिलता अमूमन, अल्लाह एक तो जन्नत में देगा, आखरत में देगा, क्यामत के दिन देगा कि आओ दुनिया में तुम मेरे लिए कमजोर हो गए थे तो आज मैं तुम्हें इसकी इज्जत देता हूँ। अल्लाह ताला ने ये जो नबियों को सिफारिश का हक दिया है ना, वो भी असल में गार्ड ऑफ ऑनर है। दुनिया में लोग नबियों की बातों पर कान नहीं धरते थे और उनको उनकी मेहनतों और कोशिशों का हस्बे हाल फायदा नहीं मिलता था, तो अल्लाह आखिरत में कहेगा ओ आज फरिश्तों इनको ऑनर दे दो, इनसे ले लो। अच्छा अब यहां देखिए, पूरे कुराने पाक में जहां भी अंबिया का किस्सा आता है, आप अभी भी पढ़ें आगे भी पढ़ेंगे, किसी एक जगह आपको ये आया कि नूह पैदा हुआ 25 दिसंबर फुला फुला सन में। पूरे कुरान में नबियों की बर्थडे का कहीं जिक्र नहीं है, जिक्र है तो उनके मिशन का। आज हम क्या करते हैं, हम नबियों की जात में खो गए, उनके मिशन को भूल गए। आज हम मिलादुन नबी में पड़ गए और अल्लाह के नबियों का वो मकसद हमारी जिंदगी में नहीं रहा। तो जरूरत है इस बात की कि उस मिशन को जिंदा रखा जाए। आज अगर थोड़ी सी देर हम कोशिश कर लेंगे, अल्लाह के नबियों के मिशन पे चलेंगे, तो फायदा होगा। हत्ता कि आप देखिए कि अल्लाह ने नबियों का नसब तक नहीं बताया कि कौन किसका बेटा किसकी नस्ल से था। ये तो हमें खुद ही शवाहिद से पता चलता है ना। कुरान में कहीं आपने पढ़ा कि नबी सल्लम का शजरा नसब क्या था, वो किसके बेटे किसके पोते किसके नवासे थे, हजरत मूसा किसके थे? कुछ नहीं, सरेरा बस पता चलता है, कोई इस बात को नहीं समझा। और आज मैं तो देखती हूँ जो लफाजी है अल्लाह के नबी के नाम पे, या वो आपके नसब पे है, या आपकी जुल्फों पे, या फिर आपके हुसन के किस्सों पे, दैट्स इट। और आपके बर्थडे मनाए जाने की खुशबियों में बाज दफा लोग बिल्कुल भूलते हैं। कल किसी से बात हुई, कहने लगी कि कुछ लोग दर्स में क्यों नहीं आ सके, क्योंकि वो उस दिन मिलाद भी था। और कुछ दोस्तें ऐसी हैं कि जो पूरे महीने से मिलाद अटेंड कर रही हैं। कहती मैंने उन्हें कहा ये बताओ कि तुमने एक मिलाद अटेंड किया दूसरा किया, एक कहने लगी मैंने इस महीने में 5 मिलाद अटेंड किए। उसने कहा ये बताओ कि तुमने इन 5ों से सीखा क्या है। कहती कुछ नहीं, सेम वही तरीका है कि जाते हैं नाते हैं, पढ़ते हैं कुछ कुरान पढ़ते हैं, फिर खाते हैं पीते हैं, तो आ जाते हैं। और एक मिलाद कम से कम 4 घंटे का होता है, 4 से 5 घंटे का होता है। तो वो कहती कि देखो तुम ऐसा करो कि तुम 4 मिलादों में चली जाती, एक दर्स में आ जाओ, कुछ तो सीखोगी ना, कुछ तुम्हें मिलेगा ना। लेकिन शैतान ने कितने खूबसूरत स्लोगन्स के साथ आज हमें दूर कर दिया अल्लाह के नबियों के मिशन से। अल्लाह ताला हमें समझ दे दे और फिर हम उसके ऊपर चल के अल्लाह के नबियों वाला काम कर सके। फिर इसके बाद अब अगला तस्करा है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। वइन्ना मिन शियतिही लइब्राहिम, और नूह ही के तरीके पर चलने वाला इब्राहिम था जब वो अपने रब के हजूर कल्बे सलीम लेकर आया। कल्बे सलीम का तस्कर आ गया, दिल अल्लाह की मोहब्बत में जब सारी दुनिया से बचा के सलामत कर लिया जाता है तो कल्बे सलीम बन जाता है। ये दिल भी इंसान को मुस्लिम बना देता है। आप देखिए कि अल्लाह ताला क्या चाहता है कि इंसान ऐसे मुसलमान हो जैसे सूरज और चांद मुसलमान है। जब कहा निकल आओ निकल आए, जब कहा डूब जाओ डूब पड़े, कोई सवाल नहीं कोई बात नहीं कुछ नहीं, सब कुछ कहा चल पड़ो चल पड़ो। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उनका दिल बड़ा सलामत था। अल्लाह हमारे दिलों को भी सलामत कर दे, क्योंकि कल्बे सलीम जो होता है ना वो दूसरों को बेदीनी में नहीं देख सकता, वो दूसरों को शेयर करता नहीं देख सकता, वो बिदत करता नहीं देख सकता, वो सोशल वर्क के नाम पर अल्लाह के कानून नहीं तोड़ रहा होता। और कल्बे सलीम सख्त दिल नहीं होता, सॉफ्ट हार्टेड होता है। पूछिए मेरा दिल कैसा है, आप देखिए कि अल्लाह क्या चाहता है कि हर एक का दिल कल्बे सलीम हो। और जो कल्बे सलीम होता है वो गीबत नहीं करता, वो गम नहीं पालता, वो शिकवे नहीं करता। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को सलामत कर दे। टूटी हुई चीज की क्या वैल्यू है, अगर दुनिया की मोहब्बत में टूटा हुआ दिल लेकर कल जाएंगे तो क्या कबूल होगा? अल्लाह कहेगा जिनको आधा दिया था बाकी भी उनको दे दो। फोकस्ड होने की जरूरत है, हर खराबी से पाक, अकीदा सही, अखलाक सही, इबादात सही, मामलात सही हो, कोई कहीं सरकशी और नाफरमानी का कोई जज्बा ना इंसान के अंदर दिखे, बुरे रुझानात बुरी ख्वाहिशात से पाक करके इंसान अपना तज़किया कर ले, ऐसे दिल को कहते हैं कल्बे सलीम। इस कल अली अभी ही, अब इजहार देखिए कल्बे सलीम होने का, हम अपना भी चेक कर सकते हैं क्या मेरा दिल कल्बे सलीम है। अगर है तो इसकी निशानियां हमें इस तरह दिखनी चाहिए, क्या कि जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा ये क्या चीजें हैं जिनकी तुम इबादत कर रहे हो, यदि शिर्क को क्या कह रहे हैं, ये क्या चीजें हैं, कैसी बातों को लेके चलते हो, और देखे कि बाप दादा के रस्म रिवाज पे फिर चोट पड़ी। ये कल्बे सलीम की अलामत है कि अल्लाह को छोड़कर झूठ घड़े हुए माबूद चाहते हो। आखिर रब्बुल आलमीन के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है। फिर उसने तारों पर एक निगाह डाली और कहा मेरी तबीयत खराब है। क्या पता चला कल्बे सलीम वाले प्लानिंग करते हैं। इंतजार नहीं करते कि लोग मिलेंगे तो काम करेंगे, बल्कि वो काम शुरू कर देते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले थे, और आप देखेंगे कि इब्राहिम की जिंदगी का जिहाद आपको भी दिखेगा। अभी तो जुबान से जिहाद करते हुए दिख रहे हैं ना। ये क्या तुम इन बुतों को पूजते हो, क्या इन बुजुर्गों के पीछे लगते हो? फिर आगे आप देखेंगे हाथ का जिहाद भी करते हैं। गोया कि कल्बे सलीम कौन है कि अल्लाह के रास्ते की हर रुकावट को अपने हाथ से दूर करता जाता है। फतवल्लौ अन्हु मुदबिरीन, चुनाचे वो लोग इसे छोड़कर चले गए, उनके पीछे वो चुपके से इनके माबूदों के मंदिर में घुस गया और बोला, आप लोग खाते क्यों नहीं है? क्या हो गया? आप लोग बोलते भी नहीं है? इसके बाद वो इन पर पिल पड़ा और सीधे हाथ से खूब जरबे लगाई। वापिस आकर वो लोग भागे भागे इसके पास आए। उसने कहा, क्या तुम अपनी ही तराशी हुई चीजों को पूछते हो? हालांकि अल्लाह ही ने तुमको भी पैदा किया और इन चीजों को भी जिन्हें तुम बनाते हो। उन्होंने आपस में कहा कि इसके लिए एक अलाव तैयार करो और इसे दहकती हुई आग के ढेर में फेंक दो। उन्होंने इसके खिलाफ एक कार्रवाई करना चाही, मगर हमने उन्हीं को नीचा कर दिखाया। यहाँ आप देखिए कि हाथ का जिहाद है। सही मुस्लिम की वो रिवायत याद आ रही है कि तुम में से जो कोई बुराई को देखे तो पहले हाथ से रोके, फिर जुबान से रोके, और ये भी ना कर सके तो फिर दिल से बुरा जाने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारी कोशिशें की और इस तरीके से अल्लाह ताला के आगे हुज्जत पेश कर दी कि उनका ये सारा मामला जो खुल के दिखता है। अब इसमें आप देखिए कि क्या हालात हुए कि उन्होंने एक जगह जाने से इनकार किया और कह कह दिया इन्नी सकीम। यहाँ से एक हल्का सा इशारा मिलता है। वैसे तो हम इस पर डिटेल से बहुत बात कर चुके हैं कि हजरत इब्राहिम की जिंदगी के तीन झूठ जो दिखते हैं उनमें एक ये, लेकिन आप देखिए कि बहुत सब हमारे घर वाले या हमारे रिश्तेदार या हमारे शौहर हमें मजबूर कर सकते हैं कोई गुनाह की महफिल में जाने को, ये देखो ये सुनो करो, तो यहाँ आपको बस हुज्जतें मौजूद है कि इब्राहिम एक बच्चा था, अकेला था, उस वक्त कोई उनका साथ भी देने वाला नहीं था। अपना घर यानी बाप खुद बुत फरोश था, बुत बनाने वाला था, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने आप को इधर रखा। और उनकी कौम उस दौर की सुपर पावर कौम थी। पीछे हम बात कर चुके हैं कि उर के लोग बिजनेस माइंडेड भी थे, दौलतमंद भी थे, पढ़े लिखे भी थे। 60 का हिंसा इन्होंने ईजाद किया, गिनती इन्होंने ईजाद की, लिखने पढ़ने का काम इस कौम ने किया। आप जाकर इनकी आयतों की तफसीर सुनिएगा, आपको बड़ी डिटेल से बताया गया था कि कितनी एडवांस कौम थी। और ऐसी एडवांस कौम के सामने इब्राहिम जैसा एक बच्चा डट जाए, हम तो किसी को सूटेड बूटेड कपड़ों में देख ले तो हमारे हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। ये कॉन्फिडेंस कौन देता है? तौहीद देती है। जब बंदा अल्लाह के लिए सच्चा होता है वो किसी से नहीं डरता, बड़े से भी नहीं डरता, छोटे से भी नहीं डरता। और आज आप देखिए कि उन्हीं बुतों ने फिर लोगों के दिलों पे इस तरह से हमला कर दिया कि किसी ने एक सर्वे करवाया, लोगों से सवाल किया गया कि एक कमरे में अगर एक एंटीक किस्म का स्टैचू हो और एक बच्चा सो रहा हो और उस कमरे में आग लग जाए और आपके पास सिर्फ चांस क्या है कि आपने दो में से एक को बचाना है, तो किसको बचाएंगे? आपको पता है कि अक्सरियत ने क्या कहा था? उन्होंने कहा हम उस ग्रीक स्टैचू को बचाएंगे क्योंकि वो अब नापैदा हो चुके हैं, बच्चे का क्या और पैदा हो जाएंगे। हैरत की बात है, बुतों को बचाने के लिए इंसानी जान ले रहे हैं। यहां भी आपको यही दिखेगा, इब्राहिम ने उनके बुत तोड़े थे ना, इन्होंने इब्राहिम की जान लेनी शुरू कर दी। यहां से आप देखिए कि जब हम लोगों को अल्लाह के दीन की बात बताएं तो लोग हमारे पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कि जिनको वही की खबर नहीं, जिनके पास दीन का इल्म नहीं, उनके साथ बिल्कुल यही बातें होती हैं कि वो अपने आप को यहां से लेकर इधर से उधर कर देते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की कोशिश करने लगे, कैसे? पीछे हम पढ़ चुके हैं सूरत अल-अंबिया में बड़ी डिटेल से, लेकिन आप देखिए कि उन्होंने आपस में क्या कहा, एक अलाव तैयार करो। आज भी लोग आखिर में फिर यही करते हैं, इस जुबान को चुप करवा दो, इनको मरवा दो, इनको खत्म कर दो। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल नहीं डरे, क्या कहने लगे, वकाला इन्नी जाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। इब्राहिम ने कहा मैं तो अपने रब की तरफ जाता हूँ, वही मेरी रहनुमाई करेगा। कभी जिंदगी में आपको समझ ना आए ना करना क्या है, जाना किधर है, क्या करूं किधर करूं, तो अल्लाह से कहें कि अल्लाह मैं तेरी तरफ आ रही हूँ, अल्लाह तू मेरी मदद कर दे, मेरे लिए जो बेहतर है मुझसे वो फैसला करा ले, जो मामला तेरी नजर में बेहतर है उसको करवा ले। और आप देखेंगे कि अल्लाह ताला फिर इस तरीके से आपके लिए रास्ते बनाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा। अल्लाह से उन्होंने मांगा क्या कि अल्लाह मुझे गाइड कर, ओ अल्लाह प्लीज गाइड मी, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने इसका जवाब क्या दिया, रब्बी हब ली मिनस सालेहीन, की उनकी दुआ थी कि परवरदिगार मुझे एक ऐसा बेटा अता कर जो सालेहीन में से हो। इस दुआ के जवाब में हमने उसे एक हलीम बुर्दबार लड़के की बिशारत दी। वो लड़का जब इनके साथ दौड़ धूप की उम्र को पहुंच गया तो एक रोज इब्राहिम ने इससे कहा, बेटा मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे जिबह कर रहा हूँ, अब तू बता तेरा क्या ख्याल है। इसने कहा, अब्बा जान जो कुछ आपको हुक्म दिया जा रहा है उसको कर डालिए, आप इंशाल्लाह मुझे साबिरों में से पाएंगे। आखिर को जब दोनों ने सर तस्ली में खम कर दिया और इब्राहिम ने बेटे को माथे के बल गिरा दिया और हमने निदा दी, ए इब्राहिम तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा देते हैं। इन्ना हाज़ल बलाउल मुबीन, यकीनन ये खुली आजमाइश थी। वफदैनाहु बिज़बहिन असीम, हमने एक बड़ी कुर्बानी फिदिये में देकर उस बच्चे को छुड़ा लिया और उसकी तारीफ व तौसीफ हमेशा के लिए बाद की नस्लों में छोड़ दी। सलाम है इब्राहिम पर, हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा देते हैं, यकीनन वो हमारे मोमिन बंदों में से था और हमने इसे इसहाक की बिशारत दी, एक नबी सालेहीन में से, और इसे और इसहाक को बरकत दी। अब इन दोनों की जरूरियत में से कोई मोहसिन है और कोई अपने नफ्स पर जुल्म करने वाला है। यहाँ पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा पूरा होता है। आप देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब क्या दिखाया गया था कि बेटे को जिबा कर दिए, नहीं वो खुद समझे थे और जिबा हुआ हुआ नहीं दिखा था, करते हुए देखा था। आज आप सोचिए कि हम में से तो किसी को ये नहीं कहा जाता, और अल्लाह हमसे चाहता भी नहीं है कि हम अपने बच्चों को जिबा कर दें, लेकिन अल्लाह हमसे क्या चाहता है कि हम अपनी अन्ना को जिबा करें, हम अपने नफ्स के तागूत को बुत को तोड़ सके। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले अपने खानदान से कटे, बाप से दुश्मनी ली, अपना नफ्स मौजूद था उसको अल्लाह के आगे झुका दिया, फिर शादी हुई, बीवी को लेकर चले हिजरत के मौके पे, उनके ऊपर आजमाइश आ गई और आखिर में बुढ़ापे की औलाद जो दुआएं मांग मांग के ली गई थी और अल्लाह ताला ने उसकी आजमाइश कर दी। आप नबी सल्लम की जिंदगी देख लें या इब्राहिम की देख लें, हर रिश्ते की आजमाइश आएगी, हर रिश्ते की। उधर तो अल्लाह ने वो सहारे छुड़वा लिए थे ना, यानी नबी सल्लम के वालिद जो थे वो आपकी पैदाइश से पहले फौत हो गए, लेकिन इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप मुशरिक है, तो फौत शुदा बाप का गम इतना बड़ा नहीं होता जितना एक बाप को शिर करता हुआ देकर गम करना होता है। कितनी बड़ी आजमाइशें थी, आज हमें जरा सी आजमाइश आज हम परेशान होते हैं, हमारा एक बच्चा जरा बिगड़ने लगे हम कहते हैं बस दुनिया ढेर हो गई। नहीं, फेस इट, प्यार से बात कीजिए, अच्छे तरीके से कॉन्वर्सेशन कीजिए। फिर एक और छोटी सी चीज इसमें देखिए, बच्चे क्यों इतने फरमाबरदार हुए इब्राहिम के। जब माँ बाप अल्लाह के आगे झुकते हैं तो बच्चे फिर माँ बाप के हुक्मों के आगे झुकते हैं। हमारा जो रवैया अल्लाह के साथ होता है ना, अमूमन वही रवैया हमारे डिपेंडेंट्स का हमारे साथ होता है। पीछे हम कुरान पाक में पढ़ चुके हैं कि तुम्हें ऊपर से अजाब दूं या नीचे से दूं, तो नीचे से जो अजाब था उसकी बात में हमने किया था कि अल्लाह माँ तहतों को सरकश कर देता है, मुलाजिम सर पे चढ़ जाते हैं, जो छोटा तबका है वो बड़े तबके के ऊपर आने लगता है। लेकिन अल्लाह तआला ने इब्राहिम को इतना प्यारा बेटा दिया, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्लें अच्छी हों तो हमें अच्छा होना है। रिस्के हलाल का गहरा असर होता है इसमें। फिर इसके बाद आप देखिए कि एक और चीज इसमें, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की परवरिश के लिए कोई बड़े बड़े स्कूल नहीं चुन सके, वो तरबियत नहीं कर सके जो अमूमन दुनिया में सोची जाती है कि कामयाब औलाद के लिए और औलाद को अच्छा बनाने के लिए। लेकिन माँ थी ना, और वही का इल्म था, अल्लाह ने नबी के नुतफे से पैदा किया, उसका असर इब्राहिम के दूर होने के बावजूद उनके बेटे में दिखता है। पीछे हम देख चुके हैं कि नूह का बेटा उनके पास रहता था तो बिगड़ गया। तो असल ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह औलाद की आजमाइश से बचाए, और अगर कोई किसी किस्म की कोई खराबी आए तो अल्लाह ताला हमें उसको फिर अच्छे तरीके से लेने के ऊपर तैयार करने वाला बना दे। और आखिरी बात यह है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गले पे छुरी चलवा दी तो अल्लाह ने बकरे को उसकी जगह पे भेज दिया, फदई ना हो बिजिब नजीम। क्या पता चलता है कि बंदा जब कटने के लिए तैयार हो जाता है अल्लाह बचाने पे आ जाता है। अगर इब्राहिम तावीलें कर रहे होते, नहीं अल्लाह एक बेटा, अल्लाह आपको पता नहीं मैं कितनी मजबूर हूँ, अल्लाह आपको पता है मैं मजबूर, मेरी मजबूरियां, मेरे हालात, मेरी मुश्किलात, तो हो सकता है छुरी चल जाती। अल्लाह सिर्फ दिल देखता है, कितना कर सकते हो। जैसे बच्चे से कोई चीज मांगे और वो ना दे तो आप क्या कहते हैं, मैंने कोई लेनी थी, मैं तो दिल देख रही थी कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। अल्लाह हमारे दिल देखता है, वरना उसको ना हमारे बेटे चाहिए और ना उसको हमारा माल चाहिए। अब आगे हजरत मूसा और हारून का किस्सा, वलकद मनन्ना अला मूसा व हारून, और हमने मूसा और हारून पर एहसान किया, उनको और उनकी कौम को कर्ब अजीम से निजात दी। क्या था कर्ब? फिरौन जो उनके बेटों को जिबा करवाता था। इन्हें नुसरत बख्शी जिसकी वजह से वही गालिब रहे, उनको नहायत वाजे किताब अता की, इन्हें राह रास्त दिखाई और बाद की नस्लों में इनका जिक्र खैर बाकी रखा। सलाम है मूसा और हारून पर, हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा देते हैं। दर हकीकत वो हमारे मोमिन बंदों में से थे, और इलियास भी यकीनन मुरसलीन में से था। याद करो जब इसने अपनी कौम से कहा था, तुम लोग डरते नहीं हो? क्या तुम बाल को पुकारते हो और अहसनुल खालिकीन को छोड़ देते हो, इस अल्लाह को जो तुम्हारे और अगले पिछले अबाओ अजदाद का रब है? मगर उन्होंने इसको झुटला दिया, तो अब वो यकीनन सजा के तौर पर पेश किए जाने वाले हैं, सिवाय इन बंदगाने खुदा के जिनको खालिस कर लिया गया। नोट करें, हर नबी के साथ खालिस, चुपके से दुआ कर लिया करे अल्लाह मुझे खालिस कर दे। और इलियास का जिक्र खैर हमने बाद की नस्लों में बाकी रखा। सलाम है इलियास पर, हम नेकी करने वालों को ऐसी ही सजा देते हैं, वाकई वो हमारे मोमिन बंदों में से था। और लूत भी इन्हीं लोगों में से था जो रसूल बनाकर भेजे गए थे। याद करो जब हमने इसको और इसके घर वालों को निजात दी, सिवाय एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में से थी, फिर बाकी सबको तहस नहस कर दिया। आज तुम शबो रोज इनके उजड़े दियार पर से गुजरते हो, क्या तुमको अकल नहीं आती? वइन यूनुस लमिनल मुरसलीन, और यकीनन यूनुस भी रसूलों में से था। याद करो जब वो एक भरी कश्ती की तरफ भाग निकला, फिर कुरानदाजी में शरीक हुआ और इसमें मात खाई, आखिरकार मछली ने इसे निगल लिया और वो मलामत सदा था। अब अगर वो तस्बीह करने वालों में न होता तो रोजे क्यामत तक वो इसी मछली के पेट में रहता। कौन सी तस्बीह थी हजरत यूनुस की? ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। आखिरकार हमने इसे एक बड़ी बीमार हालत में एक चटियल जमीन पर फेंक दिया और उस पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया। इसके बाद हमने इसे 1 लाख या इससे जायद लोगों की तरफ भेजा, जिसको क्या कहेंगे 1.25 लाख, और वो ईमान लाए और हमने उनको एक खास वक्त तक बाकी रखा। यहाँ आप देखिए दिलचस्प बात है कि पीछे हमने बात कर ली सूरह अंबिया में ला इलाहा इल्ला अंता पे, लेकिन ये जो आज हमारे कल्चर में उसको 1.25 लाख पढ़ने की बात आती है, तो हजरत यूनुस का कहीं भी 1.25 लाख पढ़ना नहीं आता। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि जब इस आजमाइश से पाक हो गए, वापिस अल्लाह ने जब भेजा तो 1.25 लाख की कौम थी। किसी पढ़े लिखे ने हो सकता है इसको इसी से कर लिया। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इन चीजों से रहनुमाई लेने वाला बनाए। इस्लाम का मिजाज जो है ये रहनुमाई वाला है, कैलकुलेट नहीं करता कितना पढ़ा, कितनी दफा पढ़ा, क्या किया क्या नहीं किया। अल्लाह ताला हमें इन तमाम अंबिया कराम के किस्सों से इबरत लेने वाला बना दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।